الرحمن اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله وحجة الله في الأرضين، مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أجار محترم، آج ہمارے اس عشرے کے تسلسل کا غالباً ساتویں مجلس ہے ہماری، اور سورہ فصلت کی ہم نے آیت کی تلاوت کی ہے کہ جس میں خدا متعال فرما رہے ہیں کہ میں برین و انسان کو اپنی نشانیاں، اپنے ہونے کی اور اپنے وجود کی نشانیاں دکھاؤں گا، اور یہ نشانیاں ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں سائڈ پہ ہوں گی، یعنی خود انسانی وجود کے انسائڈ میں بھی ہوں گی اور ایکسٹرنلی کائنات کے اندر بھی، آفاق و افق میں بھی ہوں گی، تاکہ لوگوں کے لیے حق کا پتہ چل جائے، سچ کا پتہ چل جائے. ہمارا موضوع اگرچہ سیکولر، علیکم السلام، سیکولرزم اور مذہب کو لے کر ہے، اور اس کے ساتھ کیونکہ ایک چیز جو کہ سیکولرزم کا دائرہ، جب خاص کر اس کی جو فلسفیانہ انٹرپریٹیشن ہونے لگی ہے، اور پھر یہ سماجیات اور اخلاقیات اور ہر دنیا انسان کی ضروری سسٹمز کے اندر آ گئی، تو یہاں سے پھر ایک اور سوچ اور خیال جو ہے تو بہت پرانی، وہ جو ہے ان کے ساتھ لنک اپ ہو گئی، اور طے ہوا کہ کل ہم آج اس کے اوپر ایک بس طلاح اس کا ایک انٹرو کے اوپر بات کریں گے. ذرا ڈیٹیل میں تو ہم نہیں جا سکیں گے اس کے ڈیفرنٹ جو سیکٹرز ہیں اس کے اوپر، جس کو جو ہے ایتھیسٹ، ایتھیزم یا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ یونان سے نکلا ہے لفظ، ایتھیوس سے جو ہے یہ ایتھیزم نکلا ہے، اس کے ڈیفرنٹ پھر جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بھی مختلف ہے. یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے وداؤٹ گاڈ، اب خدا کے بغیر، ایتھیزم کا مطلب ہے خدا. پرانے زمانے میں اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی سوچ کے حامل لوگوں کو کہتے تھے دہریہ ہیں، یہ دہریت جو ایکچوئل اکیڈمک ٹرمنالوجی ہے وہ ہے دہریت. اس کے بعد ایک اور ٹرمنالوجی بھی، ٹرم بھی یوز ہونے لگی، وہ ہے الحاد اور ملحد. البتہ ملحد کیونکہ ایک فقہی احکام کے دائرے میں جب آتے ہیں تو وہاں پر لفظ موحد و ملحد کی بات ہوتی ہے، موحد توحید سے ہے، ملحد وہی الحاد سے یعنی انکار خدا. تو دہریہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ آج ہمارے سامنے ایک دم سے ایک نیا تصور آ گیا ہے، ایک نئی تھیوری آ گئی ہے، ایک نئی سوچ پیدا ہوئی یا کوئی نئی ایجاد ہوئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو خود قرآن مجید ایڈریس کرتا رہا ہے، اور اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ بھی اس کو ایڈریس کرتے رہے ہیں. ہاں، اس کی شکل و صورتیں بدلتی رہی ہیں. آج جو ہمارے سامنے چیلنج ہے، جو آج کا الحاد ہے، وہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف خدا کو مانا نہیں جا رہا، یا یہ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، صرف یہاں تک بات نہیں ہے. تھوڑا سا یہ آج ترقی کر گئے ہیں، اب کہتے ہیں جی نہ خدا ہے اور نہ ہی خدا ہو سکتا ہے، یہ ایک ایڈ کیا گیا ہے، نہ خدا ہے نہ ہی خدا ہو سکتا ہے. کیونکہ سیکولر جو ہیومنزم یا انسان کی جو ایک سیکولر انٹرپریٹیشن ہے، اسی کے ذہن میں، ضمن کے اندر جو ہے یہ الحاد بھی آ جاتا ہے، اور نیچرلسٹک جو سائیکالوجی اور فلسفی ہیں اس کو بھی اس کے اندر لے آئے گئے ہیں، کیونکہ وہ جو سپیریئر ہے ان کے نزدیک وہ نیچر ہے. بیسیکلی نیچر سے مراد نیچر کا جو ہم ترجمہ کریں گے عربی میں، فارسی میں، اردو میں، تو وہ طبیعت ہے. طائے طا 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 دوئی سے جو ہے نا، طبیعت، طبیعت سے ہے یہ. क्योंकि फितरत का कोई भी मुतबादिल लफ्ज बकौल डॉक्टर हुसैन नसर, जो अमेरिका में रहते हैं, जिनकी बड़ी मशहूर किताबें हैं, एक दानिश्वर आदमी है, बेसिकली ईरानी है, बिफोर रेवोल्यूशन वो वहां गए थे और एक अच्छा दानिश्वर है। उनकी मशहूर तरीन किताब, जिसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया गया है, एक नॉर्मल पब्लिकेशन ने पाकिस्तान में, मैं स्टूडेंट था तो उस वक्त मैंने पढ़ा था इंग्लिश में, उस किताब का नाम है ट्रेडिशनल इस्लाम इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बाद में ये किताब फारसी, अरबी और बहुत सारी लैंग्वेजेस में तर्जुमा हुआ और मुस्लिम जो दानिश्वर हैं उन्होंने इस किताब को तर्जुमा किया। डॉक्टर हुसैन नसर डिफरेंट इस्लामी ममालिक में आते भी हैं, कॉन्फ्रेंसिस में लेक्चर्स भी देते हैं, और उनकी जो पढ़ने वाले हैं या उनकी जो व्यूअरशिप है वो बहुत बड़ी है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में आते हैं, वहां पे भी लेक्चर देते हैं। तो वो एक जुमला कहते हैं इस ट्रेडिशनल इस्लाम इन द मॉडर्न वर्ल्ड किताब के अंदर, कहते हैं कि सेक्युलर जबान जो है ना वो इलाही और मलकूती और मानवी जो मफाहिम या मफहूम या जो मीनिंग्स हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती पूरी तरीके से, क्योंकि उसके नेचर के अंदर ये चीज है ही नहीं पहले से। तो यहां पर भी जो एक मसला है वो यही है कि सेक्युलर इंसान जो ने इंसान शिनासी जो कि इंसान परस्ती में बदल गई, ह्यूमनिज्म का मतलब बन गया इंसान परस्ती, मसला इंसान शिनासी या इंसान की पहचान का नहीं रहा, और फिर उसको फिर एक सेक्युलर लिबास में डाला गया, क्योंकि दुनिया में होने वाले हर फिनोमेना की एक सेक्युलर तोजी पेश करनी है, एक सेक्युलर रीजन देना है बेसिकली। इन्हें पूरी कोशिश ये हुए कि दुनिया में कोई भी ऐसा फिनोमेना होता है, कोई भी इश्यू होता है, पहले तो सिर्फ साइंस तक लिमिटेड किया गया था, साइंसी जो तफसीर होती थी वो कहते थे कि साइंस तो कोई मजहबी चीज है ही नहीं है, लिहाजा ये तो है ही सेक्युलर ना, ये तो है ही लिबरल, ये तो है ही गैर इलाही, इसका तो किसी खुदा और मावराए तबीयत या मेटाफिजिक्स से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो वहां पर बात यहां तक थी, तो वो तो एक हद तक थी। अब हर चीज को आप फलसफे को देखें, आप सोशल साइंसेस को देखें, हर चीज की बेस उन्होंने क्या कर दिया है, अब क्या कर रहे हैं, वो सेक्युलर बना रहे हैं। लिहाजा हम देखते हैं कि हर चीज के अंदर एक, क्योंकि इंसान ऑटोमेटिक चीजों को ज्यादा पसंद करने लगा है, तो अब कायनात के अंदर मौजूद मुख्तलिफ फनामनाज को भी ऑटो सिस्टम में डालने की कोशिश हो रही है कि ऑटोमेटिक किया जाए, यानी इंसान जो है एक मखलूक और एक हस्ती से निकल कर उसके अंदर एक ऑटो प्रोसेस हो गया, एवोल्यूशनली एक क्या कहते हैं थ्योरी के हिसाब से इर्तका पाता चला गया, और जिसके नतीजे में एक उसके अंदर खुद शुऊरी डेवलप हो गई, और फिर जो है उसकी जो अखलाकियात हैं उसकी डिफिनेशन भी, जो मॉरल एजेंसीज जिसको कहा जाता है, उसकी डिफिनेशंस भी जो है सेक्युलर होने लगी, और उसी खुद शुऊरी की बिना पर कहा जी इंसान जिस चीज को जज करता है कि गलत है वही सही है, जिस चीज को जज करता है कि सही है तो वही सही है। अब इस तरह की सोच और फाउंडेशंस के ऊपर तामीर की गई बिल्डिंग और जितनी भी इस जिंदगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, नतीजा ये निकला कि आपकी जो नॉलेज है वो भी सेक्युलर बन के रह गई और आप बायस बन गए वहां, क्योंकि पहले से ही आपने ये रिजल्ट दिया हुआ है, किसी भी उसके अंदर जो है आपने पहले से तय कर लिया है कि खुदा वुदा तो कोई है ही नहीं है, तो हमें वो ढूंढना है वो मेकानिज्म क्या है जो खुद ब खुद वाले मेकानिज्म में विथ एवोल्यूशनल थ्योरी, कि हम देखें इस फनामना को उसके उससे हम ढूंढ के निकालें कि एक्चुअल क्या था, और ये जो एक सर्कल है जो खुद ब खुद हो रहा होता है उसको दरियाफ्त करना है हमने असल में। तो यहां से प्रॉब्लम शुरू हो गई, यहां तक कि आप लास्ट टाइम आपने देखा कि साइंस के अंदर जो बिग बैंग की कायनात के बाद कायनात के आगाज के बारे में बिग बैंग की जो थ्योरी आ गई उसने तो हिला के रख दिया बहुत सो को, मुस्लिम नॉन मुस्लिम इज नॉट मैटर, ह्यूमन की बात हो रही है यहां पर, और उसके अंदर क्या कहते हैं जी, कायनात और यूनिवर्स मेड ऑफ द नथिंग, नथिंग से ये सब कुछ हो गया है। अच्छा, नथिंग को अरबी जबान में इससे पहले इस्लामिक फिलॉसफी में भी और इवन वेस्टर्न फिलॉसफी में भी यूज किया जाता था, क्योंकि हमारी जो मास्टर सोर्सेज हैं फलसफे की और तमाम उलूम की मुस्लिम दुनिया में, वो अरबी जबान में है, क्योंकि वो वसी जबान है, इजी टू अंडरस्टैंडिंग भी है और इजी टू एक्सप्लेन भी है। एक शॉर्ट लफ्ज के जरिए से बहुत बड़ी मीनिंग्स दी जा सकती है अरबी में, जबकि उसी को अगर किसी और जबान में लाएं तो दो तीन लाइनें लानी पड़ती हैं। मसलन इसका मतलब क्या, उन्होंने कहा यूनिवर्स मेड बाय द नथिंग, इट्स मीन यानी लाशई से कायनात बनी है। लाशई असल में अब सिर्फ अरबी लफ्ज नहीं है, एक फलसफी टर्म भी है ये, लाशई, ला मिन शई मिन लाशई, यानी ये फॉर्म्स हैं इसके मुख्तलिफ, और हर फॉर्म्स आसमान और जमीन का डिस्टेंस रखते हैं एक दूसरे से। अब जाहिर है कि मैं उस तरह की इस तरीके से तो यहाँ डिस्कस करने नहीं बैठ रहा कि आपके जहन को थका दूं, मैं चाहूंगा कि वो जो बॉटम लाइन है उस तक हम पहुंचे तेजी के साथ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे सामने जो मजमुआ बैठा है माशाल्लाह से वो एक बाशूर मजमुआ है, तो मुझे लफ्ज बलफ्ज उठा के उसे खोलने की और वापस जोड़ने की कोई इतनी बड़ी ज्यादा मुझे जरूरत महसूस नहीं हो रही है। सलवात बर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
अच्छा
अच्छा, इसके अंदर असल में ढूंढ क्या रहे हैं जनाब, आप जो कह रहे हैं नथिंग से जो कायनात बनी है, मेड बाय द नथिंग, तो ये आप ढूंढना क्या चाहते हैं इसके अंदर? असल में फिर वही बात है कि आप कायनात के अंदर असल में ये कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन ढूंढ रहे हैं जो खुदा के अलावा खुद से हो, मौजूद हो, यानी मटेरियल और मादे के अंदर खुद से कोई ऐसी सलाहियत हो जो खुद अपने आप को डेवलप करके इतना इंटेलिजेंट बन जाए वो, कि अल्टीमेटली खुद से होकर जमीन बना दे, आसमान भी बना दे, पूरी यूनिवर्स को क्रिएट करे, और उसके अंदर फिर जो जो भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करे, और न सिर्फ जो है बाहर पूरा करे, जमीन में पूरा करे नहीं, खुद उस वजूद के अंदर भी ऐसी जो है सलाहियतें आ जाए, खुद से आ जाए, मतलब खुद से एक इंसान बने, उस इंसान की जरूरत दो हाथ हैं तो वो भी आ जाए, दो आंखें हैं तो वो भी आ जाए, सोचने की एक सलाहियत वाली चीज हो तो वो भी आ जाए, तखलीकी सलाहियत भी आ जाए, उसके अंदर ख्वाहिशात भी आ जाए, उसके अंदर जायके छूने फिफ्थ सेंस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी आ जाए, उसके अंदर एंजॉयमेंट की हदूद भी आ जाए, उसके अंदर मोहब्बत नफरत ये सब कुछ उसके अंदर खुद ब खुद आ जाए। ये असल में तलाश ये है, यानी बेसिक हदफ ये, जाहिर है ये सब अभी हुआ तो नहीं है ना, तो कोई क्लेम भी नहीं कर सकता है कि हो चुका है इनमें से, फिलहाल तो सिर्फ ये बताया है कि जनाब ये जो जमीन और आसमान है ये जो है ना बिग बैंग की वजह से वजूद में आए हैं, यानी नथिंग से वजूद में आए हैं। अच्छा, नथिंग क्या है, स्टिल उसकी डिफिनेशन कंप्लीट नहीं है, लॉट ऑफ क्वेश्चंस और जो है उसके सामने लाइन लगा के चारों तरफ खड़े हैं कि जनाब ये जो आपकी नथिंग है इसकी पूरी डिफिनेशन चाहिए कि हमें इत्मीनान हासिल हो जाए, कम से कम जो कॉज एंड इफेक्ट का रूल है वो तो कम से कम कंप्लीटली हमें नजर आ रहा हो ना इसके अंदर, तब हम जाकर इस नथिंग को भी एक्सेप्ट करेंगे। ये असल में है। अब जाहिर है कि मटेरियल के अंदर कॉज एंड इफेक्ट है, या एक बहुत पुरानी एक बहुत कदीम फलसफे से इन अरिस्टोटेलस प्लेटो और उसके बाद भी इस्लामिक और नॉन इस्लामिक सारी दुनिया में एक बहस आती थी वजूद को लेकर, एग्जिस्टेंस यानी एग्जिस्टेंस के बारे में उसकी डिवाइड करते थे, उसमें कहते थे कि ये वाजिबुल वजूद है, मुमकिनुल वजूद है, मुमतनेउल वजूद है, यानी किसी का के वजूद का होना किसी और पर इनसार नहीं कर रहा था, कभी किसी के वजूद का होना किसी पे इनसार करता था, और कभी किसी के वजूद का जब ममतने है जब वो हो ही नहीं सकता है तो वो फिर बहस से आउट हो जाता था, ले दे के बचते थे हमारे पास वाजिबुल वजूद, यानी वो जो दूसरे वजूद की वजह से यानी किसी और वजूद की वजह से नहीं है, मुमकिनुल वजूद वगैरह, इस तरह की डिफरेंशियल होती थी। इसको भी अब उन्होंने तकरीबन क्या कर दिया है कि इस थ्योरीज के अंदर जो लाशई को लाया है जो कि मुमतने था, लाशई को लाने के बाद जाहिर है कि अब वो बहस भी सारी क्या हो गई है, रिमूव हो गई। मैं अब चलता हूं, ये जो नथिंग से जो थिंग हो चुकी है, जरा इसको हम देखते हैं कि हमारे इस्लामी मुतून के अंदर किस तरह बयान किया गया है। अब यहां पे मैं दो चीजें पेश करने वाला हूं, ये दोनों चीजें तकरीबन सेम वर्ड्स हैं। एक है, एक खुतबा है जो मस्जिद नबवी में जनरल पब्लिक में, ये पहला और आखिरी खुतबा था, सैयदे कायनात फातिमा जहरा सलामुल्लाहि अलैहा। आपने कभी कोई पब्लिक स्पीच नहीं की है, टोटल आपके एक प्रॉपर खुतबा है जो कि मस्जिद नबवी में इरशाद फरमाया आपने। वो एक क्लेम के ऊपर था जो कि हुजूर पाक की एक प्रॉपर्टी थी जो विदाउट वार के, यानी बगैर किसी जंग के हुजूर पाक को मिली थी। हुजूर पाक ने क्लेम ये था कि जो है, जो फदक के बाग नाम की प्रॉपर्टी थी, सईदा का क्लेम था कि ये भाई मुझे वालिद ने दिया है तो ये मेरी ही है। और उसको लेकर एक बहस बनी और बात बहुत लंबी हुई, और फिर मस्जिद नबवी में आपको एक तवील 4.5 A4 के सफात पर मबनी खुतबा देना पड़ा जो आज हमारे पास है। उसके बाद जो है, कुरैश और अतराफ की जो खवातीन मुसलमान, आप जब बीमार थीं तो उस वक्त आपकी आयादत के लिए आई, तो उनके सामने तकरीबन 1.5 A4 के पेज के बराबर एक शॉर्ट खुतबा दिया आपने। वो लेडीज थी सारी की सारी, वहां पर ज्यादातर उस खुतबे में क्रिटिसाइज किया है, दुख का इजहार किया है और उनकी बेमारिफती को ज्यादा हाईलाइट किया है। अब ये जो खुतबा स्टार्ट होता है उसमें हम्दो सनाए इलाही है, और अब हम्दो सनाए इलाही के अंदर जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपके बिग बैंग की थ्योरीज को उड़ा के रख रहे हैं। इसी तरह का सेम खुतबा तकरीबन ऑलमोस्ट मिलता जुलता मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा है नाहजुल बलागा में। उस खुतबे का बिगिनिंग बिस्मिल्लाह के बाद जो है वो भी बिग बैंग की थ्योरी को उड़ा के रख देता है और साथ में समझाता है। अब खुतबा कुछ यूं है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्वाहिदिल्लाहदिस्समद अल्मुतफर्रिद अल्लदी ला मिन शैइन काना वला मिन शै खलक मा कान। और सैयदाए कायनात भी यही फरमाती हैं कि देखें, आप कहते हैं कि ला शै का मतलब होगा कायनात नथिंग से बनी है, यानी क्लेम ये है ना, इसका मतलब ये हुआ कि देर वाज ए नथिंग और उस नथिंग से थिंग हो गया है। मैं सेम टर्म को यूज करना चाहता हूं, इसका मतलब यह कि नथिंग का एक तसव्वुर है न होने का, जिसको हम पहले कह चुके थे ममतने उल वजूद, जो पहले ही फलसफे ने उड़ा के रख दिया था और उसको आउट कर दिया था कि ये नथिंग है तो फिर उसके ऊपर बहस ही क्या करनी है। लेकिन साइंस ने आकर उस कॉन्सेप्ट को अपना लिया और बिग बैंग की थ्योरी को उसके ऊपर बेस कर दिया। अब सैयदे कायनात अपने खुतबे में फरमाते हैं, फरमाती हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलकल अशिया ला मिन शैइन, यानी अदम से, यानी अदम से किसी चीज को नहीं बनाया खुदा ने, यानी मादे से किसी चीज को नहीं बनाया, नथिंग से खुदा ने, नथिंग नाम की कोई चीज थी जिससे खुदा ने थिंक नहीं किया है, बल्कि कुछ भी न था। अब ये देखिए सेम वर्ड्स है ना, सेम टर्म्स को यूज किया है, इसलिए आपको दोनों के फर्क को समझना होगा। खुदा ने अदम से वजूद में लाया है, अदम से वजूद में लाया है खुदा ने चीजों को, ऐसा नहीं है कि न होने से होना कर दिया है। ये दो दो डिफरेंट है, फलसफे के अंदर दोनों डिफरेंट है, लेकिन आप साइंस वाले सेक्टर में जाएंगे उसी बिग बैंग की थ्योरी से तो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा, क्योंकि फलसफे में जाएंगे तो पहले मुझे फिर उसकी फिक्री बेस बनानी पड़ेगी कि मतलब क्या है, तो एक लंबी चौड़ी हमारी बहस हो जाएगी। यानी खुदा ने दर हकीकत अदम से वजूद बख्शा है। एक जो टर्म्स है वो ये है, ला मिन शै इन से कायनात को खलक किया है, न मिल ला शै से कायनात को खलक किया है। यानी दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रही है, आपने मफरूजा बना लिया कि ला शै या मिन शे को एक मुस्तकिल हैसियत दी है, ना नथिंग को एक मुस्तकिल हैसियत दी है आपने असल में। यानी नथिंग के जनरल परसेप्शन तो यह होना चाहिए कि देर वॉज नथिंग इज नथिंग, लेकिन खुद आपने जब उसको प्रेजेंट किया है तो असल में उस नथिंग को ही खुद एक कॉज एंड इफेक्ट की तरह बना दिया है आपने, कॉज बना दिया है आपने नथिंग को बिग बैंग थ्योरी के अंदर, जबकि नथिंग मींस नथिंग। और आपने जब लाके नथिंग को, नथिंग से सारा कुछ बना दिया, तो एक सेक्टर आपका फलसफे में चला गया, फिलोसॉफिकल साइंस बना दिया असल में दूसरे अल्फाज में, और दूसरी तरफ आप लेके आ रहे हैं साइंस को, क्योंकि दूसरा जो हिस्सा जो थिंक है, जो हो गया है, वो तो आपके सामने है क्योंकि कायनात मौजूद है। जो न हुआ है वो किधर है? वो जो नथिंग है वो कहां है? उसको भी मटीरियल होना चाहिए ना, तो वो मादा है कहां? जस्ट एक अंदाजे हैं। आप चाहते हैं बस आप ऐसे मान लें, क्यों माने? आपके काम तो एक्सपेरिमेंटल साइंस है, आप तो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के कायल हैं। आप लेबोरेटरी में जब तक लाके चीरते फाड़ते नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें वो हिस्सा भी चाहिए, वो जो नथिंग वाला भी हमें चाहिए। आप लेबोरेटरी में ले आए इसको, आप मेरे फिफ्थ सेंस के कंट्रोल में दे देंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, अदरवाइज देयर इज नथिंग। यानी आप मादे से ऊपर जाना चाहते हैं, नॉन मटीरियल थिंग आप ये बताना चाहते हैं। इफ देयर वाज अ नॉन मटीरियल, देन मींस यू हैव टू एक्सेप्ट देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग इज नॉन मटीरियल। मादे से ऊपर वो फिर बहुत कुछ है। हम तो यही कहते आ रहे हैं, अल्लदीन यूमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान रखने की बात करते हैं, गैब मादा नहीं है। तो लिहाजा ये वो चीज है जिसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इसी तरह आप आ जाते हैं मजहब के हवाले से, जो मजहब को वो क्रिटिसाइज करते हैं एथियस्ट हजरात। तो मजहब के अंदर उनका एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ देम, आप डॉक्टर मोरिस बोकाई को तो जानते हैं ना, गूगल कर लीजिएगा, उर्दू में भी है उसकी किताब डॉक्टर मोरिस बोकाई। डॉक्टर मोरिस बोकाई, लंबी स्टोरी है, शॉर्ट करते हैं क्योंकि आज तय हुआ है कि चीजों को जरा जल्दी समेटना है और मेरे ख्याल में अब टाइम मेरे पास कम रहा है। डॉक्टर मोरिस बोकाई एक मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम एक बहुत बड़े रूलर या हुक्मरान से मिले और उसने कहा जी, मेडिकल जाहिर है उससे, साइंस से उसका ताल्लुक था, उसने कहा मैं आपकी किताब जो मुकद्दस किताब है मुझे पढ़ता हूँ, मैं तो जगह जगह पे कंट्रडिक्शन देखता हूँ, इधर कुछ कह रहा है सेम उसके अगेंस्ट दूसरी आगे जाके कहता है, मुतजाद बातें हैं इसके अंदर। वो जाहिर है मुस्लिम जो हुक्मरान था वो परेशान हो गया, सऊदी अरब का किंग था असल में फैसल, परेशान हो गया। तो उलमा ने उसको, मिस्र के उलमा ने उनको आंसर किया, उसे कहें कि उनसे पूछें उनको अरबी आती है जो वो कुरान मजीद को समझ रहा है। उसने कहा नहीं, मेरे पास तर्जुमा है। कहा तर्जुमा मुतरजिम की सोच है, न कि खुदा का, खुदा की वही। तो जाहिर है दानिशमंद आदमी है, दानिश्वर है, तो उसने कहा बात तो सही है। वो इजिप्ट चला गया, मिस्र में कई साल लगाए, उसने अरबी को प्रॉपर तरीके से सीखा, उस लेवल की अरबी, लिटरेचर और अदबियात और सब कुछ की जिससे कुरान को समझ सके। उसके बाद उन्होंने किताब लिखी है कुरान बाइबल एंड साइंस, ये इंग्लिश उर्दू मौजूद है, आप गूगल करेंगे मिल जाएगी आप, डॉक्टर मोरिस बोकाई की, वह निकाल लिया हमारे भाई ने कुरान बाइबल एंड साइंस। तो थोड़ी देर पहले तो आपको सारी कंट्रडिक्शन नजर आ रही थी कुरान में, मुतजाद और तजादात का मजमुआ नजर आ रहा था नऊज बिल्ला। अब क्या हुआ? क्योंकि आप एक मुतरजिम की सोच पढ़ रहे थे जिसका इस्तेमाल जरूरी है, जाहिर है लोगों को अरबी नहीं आती तो क्या करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ उसी सोच पर रुक जाते तो नतीजा वही था जो थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि मुतजात है, कंट्रडक्शन है। जब आप एक्चुअल लैंग्वेज में आए तो वो कंट्रडक्शन आपको नजर नहीं आने लगा भी, क्योंकि आप समझ गए कि एक वर्ड, जैसे मैंने दोपहर में भी समझा दिया था कि एक तरह की स्ट्रक्चर होता है अल्फाज के, मीनिंग्स मुख्तलिफ होते हैं, उस मीनिंग्स को दूसरी आयतें या ऊपर नीचे की आयतें या समटाइम हदीस उसको इंटरप्रिटेट करती है। यही तो इस कुरान का हुस्न है, वगर ना कहते हैं ना कि ये दीनी तालिब इल्म हौजे में जाते हैं 14-15 साल से पहले तो ये फारिग ही नहीं हो जाते, बूढ़े आए होके काफी एज गुजार के आ जाते हैं, उसका रीजन यही है, एक सिर्फ हदीस को समझने के लिए 100 टाइप की हदीसें हैं हमारे पास, मिनिमम 100 टाइप बनती हैं हदीसों की, वो सब कुछ समझना है, उनमें से हर एक को समझना होता है, फिर तफसीर की कितनी किस्में हैं उसको समझना होता है, सिर्फ तफसीर और हदीस काफी नहीं है, आपने उसके बैकग्राउंड को भी चेक करना है, ये आयत उतरी कैसे थी, क्या सिचुएशन बनी थी, क्या वो रीजन था आयत के उतरने का या वैसे ही कोई हुक्म के तौर पर आया था, जब आया था तो उस वक्त के मुसलमानों ने क्या अंडरस्टैंड किया था, इस वर्ड्स को कैसे यूज किया था, कैसे समझा था, और क्या इसके अंदर पॉसिबिलिटीज हैं कि हम अंडरस्टैंडिंग करें। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो इसका प्रूफ मेरे पास क्या है, मैं एज ए मुफसिर कैसे इसको आर्ग्यू करूं और प्रूफ कर दूं, कहां से मैं, मेरे पास एविडेंस क्या है, मुझे यकीन के मरहले में हूं या नहीं हूं। लॉट ऑफ थिंग्स जैसे आपके हर उलूम में है, आपको पता है कि एक स्पेसिफिक एक एक लेवल तक आप जब तक सीखते नहीं है, रिसर्च नहीं करते हैं, वो चीज सामने आती नहीं है। यहाँ पर इसीलिए हम कहते हैं मेंबर पे आप जिसकी आय कर सकता है उसको बिठा के यहाँ पर ना बिठा दें, मजाक नहीं है। बाब मदीनतुल इल्म का मेंबर है और मदीनतुल इल्म का मेंबर है, जाहिलों को यहाँ आना ही नहीं चाहिए, एज ए जाकिर, एज ए मौलवी, एज ए खतीब, ये एक बढ़िया जिक्र ही करना है। जिक्र कहाँ दिखा है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी एरा गेरा उठे जिक्र आले मोहम्मद के नाम पर आपके लिए लेक्चर दे के चला जाए, कहाँ लिखा हुआ है, किस हदीस में है, कहे नहीं है हमारे पास। सलवात बार मोहम्मद वाले में बस पहली चीज ये आ गई कि जो मजहब के ऊपर उन्होंने इतराजात किए हैं कुरान के तर्जुमे पढ़कर, हैं कुछ जो है ना कुरान के तजादात को लेकर बहुत कुछ आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, पढ़ते हैं तो समझ में आता है बेखुदा 99% आर्टिकल्स का मसला यही होता है कि उन्होंने तर्जुमा पढ़ा, उस तर्जुमे से उन्होंने नतीजा लिया और फिर क्रिटिसाइज शुरू कर दिया। एक तो यह मसला है, दूसरा यह कि बाद साइंसी चीजों को कुरान मजीद से समझने की कोशिश की जाती है। इसमें ये पहले बात तो ये हमें समझना होगा कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, बल्कि कायनात में कुछ चीजों को बेनवान कुदरत की निशानियों के तौर पर खुदा ने पेश किया है और थोड़ी सी उसकी तफसील दी है। यहाँ खुदा का हदफ न तो एस्ट्रोनॉमी सिखाना है, न फिजिक्स पढ़ाना है, न बियोलॉजी बताना है, न फिजिक्स पढ़ाना है, ना कोई केमिस्ट्री पढ़ाना, कोई और चीज है। तखलीक इंसान के बारे में खुदा ने इशारा किया है, बुनियादी तौर पर उसका मकसद क्या है, कुदरत इलाही को सामने पेश करना है, ना कि खुदा ने इंसान की तखलीकी मराहिल एजुकेट करने और टीच करना है, यह हदफ नहीं है खुदा का। मसलन फरमाया हुवल लदी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ यशा हुवल दुल फज्ल अल अज़ीम, पाक है वो जात जो रहम मादर में पानी से तुम्हारी नक्श निगार करता है, तुम्हारे नक्श निगार बनाता है पानी से, पानी से तो नक्श निगार हो नहीं सकती जब तक फ्रीज ना करें आप। खुदा ने वहां पर जो है माँ का लफ्ज इस्तेमाल किया इंसानी नुतफे को। यहां पर असल हदफ खुदा का क्या है, असल हदफ यह है कि जो इंसान की जो तखलीक है उसकी कुदरत खुदा रखता है। या फरमाया अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत, आप पहाड़ों को देखते क्यों नहीं हो, या नदियों को क्यों नहीं देखते, आप जानवरों को क्यों नहीं देखते कि कैसे खुदा ने इसे खलक किया है। दावत तहकीक भी है, दावत रिसर्च भी है, एट द सेम टाइम असल में खुदा एक बताना चाहता है खुदा की कुदरत क्या है, शान व अजमत व कुदरत क्या है, न कि आपको न एस्ट्रोनॉमी पढ़ा रहा है, न बियोलॉजी पढ़ा रहा है, न फिजिक्स पढ़ा रहा है खुदा, ये उसकी किताब है ही नहीं है। उसके बावजूद ये कमाल है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी और आपके अल्जबरा और मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी की बातें कुरान के मजीद के अंदर हैं, और जो कुरान मजीद ने क्लेम किया है वो 100% सही भी हैं। जो जो आप डिस्कवर करते जाते हैं तो पता चलता है जो कुरान ने पहले कहा था वो सही है। मैंने पहले आप लोगों को बताया स्ट्रासबर्ग के अंदर काफी साल पहले छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक सलवातुल्लाह व सलामहु अलैहि क्यों लेकर मुस्लिम दान मुस्लिम दानश्वर इकट्ठे हुए थे, आर्टिकल्स पेश किए जो किताब की शक्ल में डल गए हैं। वो आर्टिकल हर एक किसी ने अपने तौर पर जो है इमाम की हयात तय्यबा और आपके फरमाइशात को लेकर गुफ्तगू की है, जो किताब की शक्ल में आ गई है सुपरमैन इस्लाम के नाम से, इंग्लिश में भी है ये किताब और उर्दू में भी सेम नाम के साथ तर्जुमा हो चुकी है बाकी जबाने में भी। तो एक बड़ा प्रॉब्लम एथियस्ट का क्या है, मजहब को क्रिटिसाइज करते वक्त बाइबल के साथ जो करते हैं वो तो करते ही हैं, वो अपनी जगह रहने दे, हम अपने हिस्से का की बात करें तो उसमें यह है कि वो बेचारे मजहबी जो रिसोर्स होता है वो फर्स्ट लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में, क्योंकि ये वही की जबान है, किसी इंसान ने नहीं बनाया, बाइबल की तो अपनी कोई जबान बची नहीं है, इसलिए आप देखते हैं जिस मुल्क में जाए उस मुल्क की जबान में वो किताब मिलती है। कुरान मजीद अरबी जबान में हर जगह मिल जाएगी आपको, इवन हमारी दुआएं अरबी जबान में, हाँ उसका तर्जुमे हो सकते हैं साथ में, और आज तक हमने तर्जुमों को एक्यूरेट कुरान नहीं कहा है। तर्जुमा एक इंसान की सोच है जो उस जबान के अंदर जिसने जिसकी अपना कल्चर है, जिसकी अपनी सकाफत है, जिसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज है, जिसके अपने तरीके तश्बीहात और ताबीरात हैं, उसने उस हिसाब से उसको डाला है, उसके अंदर ट्रांसलेट किया। उसका मतलब ये नहीं कि वो खुदा का कलाम बन गया, नहीं, वो उस बात मुतरजिम का कलाम है, कलाम इलाही की तर्जुमानी की है उसने, बस इतनी सी बात है। एक्चुअल खुदा का कलाम, जो वाकई खुदा का कलाम है, लफ्ज ब लफ्ज जेर और जबर खुदा की तरफ से आया है, और उसके अंदर एक जेर और जबर कोई तब्दीली कुरान के अंदर वाकई नहीं हुई है, एक लफ्ज कम नहीं हुआ है, एक लफ्ज उसके अंदर एक्स्ट्रा एड नहीं हुआ कुरान में, और लिहाजा उसको अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आप कह सकते हैं हाँ जी कंट्रोडक्शन है, तो फिर हम उस बात को मानेंगे। ये दूसरा उनका बड़ा जो है प्रॉब्लम था। तीसरा ये कि वो फलसफियाना इसकी इंटरप्रिटेशन भी करने लगे हैं, इमरानियात या सोशल साइंसिस के ऊपर भी करने लगे हैं कि अभी हम ज्यादा इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे, साइंसी तो ऑलरेडी है ही और मौजूद ही है। अब चलते हैं जरा तेजी के साथ दो तीन पॉइंट्स और फिर एंड की तरफ जाते हैं। वो ये है, असल प्रॉब्लम कहां पर आ रही है एथियस्ट को? ये प्रॉब्लम हिस्टोरिकली ह्यूमंस फेस करता आया है, और कुरान मजीद ने भी हमारी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दिया और हमें इस प्रॉब्लम की तरफ अटेंशन भी कराया है। वो मसला क्या है कि थोड़ी देर पहले भी हम बात कर रहे थे, सूरह अनाम के अंदर खुदा फरमाते हैं, व इन तता अक्सर मिन फिल अर्द यतलू कान सबीलिल्लाह यत्तबिउन इल्ला दन। ये सूरह अनाम की 116 आयत है। उसके अंदर फरमाया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अगर तुम उनकी बात मानने लगो तो तुम्हें राय हक से भटका देंगे, सीधे रास्ते प्योर रास्ते से भटका देंगे। क्यों क्यों भटकाएंगे? वो आपके दुश्मन हैं, उनका कोई खास मकसद है? कह रहे नहीं, हो सकते हो बेचारे ऑनेस्ट हों अपनी जात में, और उनकी रिसर्च भी ठीक हो, आपके साथ भी वो मुखलिस हों, प्रॉब्लम यहां नहीं है, वो शैतान भी नहीं है, हो सकता है शैतानी अजाइम भी नहीं रखते, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? खुलूस और इखलास रखने के बावजूद वो बेचारे खुद जो है ना गुमान की पैरवी करते हैं, असल जन की पैरवी करते हैं, अंदाजों की पैरवी करते हैं, न सच्चाइयों और हकीकतों की। और जगहों में है, वला तकिफ मा लैस लक बिहि इल्म, कहता है जिस जिस चीज के बारे में आपको जो है ना पूरी तरह यकीन हासिल ना हो जाए उसके पीछे चलने की जरूरत नहीं है, ठीक है आप रखो अपनी पाइपलाइन में डाल दो उसको, लेकिन उसके पीछे मत जा रहा हूं। बाज जगहों में फरमाया साहिबान ईमान की अलामतें बयान किया, एक मोमिन की अलामत क्या क्या है, तो उसके अंदर फरमाया कि वो नमाज के बारे को लेकर बड़ा सीरियस होता है, वो सिर्फ नमाज पढ़ता नहीं बल्कि नमाज पढ़ने का कल्चर ईजाद करता है। उसके बाद फरमाते हैं कि वो जन के पीछे कभी नहीं जाता, खास करके ये किसी इंसान के साथ जुड़ा हुआ हो, क्यों? इन नबाद इस्मुन, बाज आपके दूसरों के बारे में अंदाजे मनफी हो तो बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा में आते हैं। ये मेरे पास सबूत नहीं है लेकिन मैं किसी और आदमी के बारे में बदगुमानी रखता हूं, काहे? अब एक साहिब ईमान की कहा ये पहचान में से नहीं है कि वो बदगुमानियां नहीं रखता, बदगुमानी के लिए यकीन होना जरूरी है, गुमान के ऊपर आप जो है फैसले कभी भी ना लें, डिसीजंस कभी भी ना लें। तो मोस्ट ऑफ एथियस का प्रॉब्लम ये है, और उनकी जो थ्योरीज हैं उसके अंदर यही प्रॉब्लम है कि वो यकीन से पहले अंदाजों में फैसले ले लेते हैं। बिग बैंग भी अभी यकीन नहीं है, एक अंदाजा है, फैसला ले लिया गया है, क्योंकि असल में ढूंढ ये रहे हैं कि बगैर खुदा के कायनात बन जाए, पहले से ही तय किया है ना आपने, पहले से जहन बना लिया है जहनियत के साथ, वो जो आलम इकबाल का शेर है बड़ा प्यारा, इसमें कहते हैं खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, यानी आपने एक सोच पहले बना ली है, उस सोच के एविडेंस तलाश करने के लिए कुरान में जाते हैं। ये गुमराहकुन तरीका है, ये जाके कुरान, मसलन हमारे उसमें भी हमारे शिया भाई भी, हमारे लिए तशी भी ये काम करते हैं, अपने तौर पे उन्होंने ईद की एक डिफिनेशन बनाई है, शादी की एक डिफिनेशन अपने जहन में तराशी है, फिर आके कहते हैं ओ फला इमाम की अभी तो जो है ना 40वां नहीं हुआ था, अभी आप ईद कुर्बानी मना रहे हैं, अभी आप ईद क्या कहते हैं रमजान मना रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अपने तौर पे आपने ईद की एक डिफिनेशन बनाई, ईद मतलब नाचना गाना ढोल पीटना रंग बरंगे अलग उल्ले करना, आपने ईद तो खुदा ने तो कहा ईद जो है इबादत तो बंदगी है,
खुदा ने तो कहा है शादी निकाह इबादत और बंदगी है, आप चाहें तो किसी भी दिन में कर लें अगर जरूरत आपको महसूस होती है। हाँ, और बहुत जो हरकतें आप करते हैं ढोल ढमाके और ले, वो ना करें, निकाह तो इबादत है। ईद की नमाज पढ़ना क्या हराम होगा? फर्ज करें अगर किसी दिन हमें आशुरा के, अभी तो है, होगा तो कभी नहीं, लेकिन एक फर्ज करने में क्या है, आशुरा के दिन ईद की नमाज पढ़ना पड़ गया तो हराम हो गया। ईद के दिन भी नाचना गाना हो गया तो हलाल हो जाएगा, क्योंकि ईद है। ये मैंने जहनी इख्तरा है, मैंने बनाया, मैंने अपने कल्चर को दीन समझा है। खुद बदलते हैं नहीं, कुरान को बदल देते हैं। प्रॉब्लम यहां पर भी ऐसा है, आप पहले से जहनियत बना चुके हैं कि हमें यूनिवर्स विदाउट खुदा चाहिए, विदाउट गॉड चाहिए, विदाउट क्रिएटर चाहिए, कोई ऑटो सिस्टम चाहिए कॉज एंड इफेक्ट का, और देन यू आर गोइंग टू रिसर्च, और आपने फिर यही ढूंढना है। आपको वहां कोई क्लू मिल भी जाए तो आप पीछे हटेंगे। इसलिए डेकार्ट जो बड़ा फलसफी था, उसके कुछ जुमले हैं, मैं कोट करके लेके आया हूँ। डेकार्ट कहता है, मेरा पहला मंतकी जो उसूल करार देता है अपने लिए, वो कहता है मैं किसी चीज की हकीकत तो नहीं मानूंगा जब तक वो चीज मेरे लिए यकीन न हो जाए। अपनी तस्दीकात के मामले में जल्दबाजी मैं कभी भी नहीं करूंगा, अपनी ख्वाहिशात के मैलान के पीछे नहीं भागूंगा। ये डेकार्ट के हैं, डेकार्ट की बातें हैं। कोई पैगंबर भी नहीं है ना, कोई इलाही मदरसे का पढ़ा हुआ बंदा है। दूसरी बड़ी चीज है जल्दबाजी, जल्दबाजी करते हैं। अभी आपने पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया, एस्टेब्लिश नहीं किया है चीजों को। आप देखें साइंस में कितनी थ्योरीज हैं जो एस्टेब्लिश करके दे दी जाती हैं, कुछ अरसे के बाद उसको रिवर्स करके चेंज कर दिया जाता है। इवन मेडिसिन की दुनिया में, जो इंसान की ह्यूमन और ह्यूमन जो है लाइफ, उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। कई बार केस कितना होता है कि वही मेडिसिन जो है उसके साइड इफेक्ट इतने हाई हो जाते हैं कि आप उसको रिमूव करते हैं, जल्दबाजी में आप लेके आते हैं। अभी जो जो कोरोना वायरस आया था, तो इसके लिए जो एंटीवायरस की जो बातें आ रही थी या वैक्सीन की जो बातें हो रही, तो WHO बेचारा फरियाद कर रहा था, वो डर था उसको कि कहें जल्दी में, क्योंकि तिजारती अंसुर भी आ रहा है इसके अंदर, पैसे का अंसुर भी, एलिमेंट भी इन्वॉल्व हो चुका है, अब बिजनेस बन गया ना, और ये चीज जो है, और सबसे कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट जो है ना प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है दुनिया में, वही मेडिसिन का और मेडिकल से रिलेटेड है, खाने पीने के साथ साथ, क्योंकि इंसान भूखा रह सकता है कुछ दिन, भीख मांग के खा सकता है, लेकिन अपनी दवाई को तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसको पता है कि मेरी जान खतरे में चली जाएगी। तो इसमें जल्दबाजी की जाती है, बाद में पता चलता है इसके साइड इफेक्ट हैं। WHO डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कोई कंपनी जो है ना फौरन लॉन्च कर दे और दुनिया इसलिए चुप कर जाए, क्योंकि उस वक्त फौरन जो जो पैनिक है इसको खत्म करना है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इससे हम लॉस्ट कर रहे हैं, इकोनॉमी गिर रही है वगैरह लाभ। तो ये खतरात हमेशा मौजूद रहते हैं। सो वन ऑफ अदर एलिमेंट इज क्या है, जल्दबाजी है। जल्दबाजी के अंदर ये कि पूरी तरह इल्म हासिल करना जरूरी है। कुरान भी बार अक्सर जो मैं कहता है, जैसे सूरह असरा है आयत नंबर 85 के अंदर, वमा उती तो मिनल इल्म इल्ला कलीला, इंसान को कहता देखो हमने तुम्हें नॉलेज दिया है लेकिन बहुत कम है वो नॉलेज तुम्हारी, मत समझो कि तुम्हारे पास कंप्लीट इल्म है, कंप्लीट इल्म नहीं है तुम्हारे पास, जो तुम्हारी रिक्वायर्ड है ना उसके बराबर इल्म है, जो जितनी तुम्हारे जरूरी है। अब वो रिक्वायर्ड्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है एक ह्यूमन की, वो उसकी मकसद हयात से जुड़ी हुई, मेरे यहां होने का मकसद क्या है, उससे मेरी जरूरत भी जुड़ी हुई है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे ज्यादा इसके। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं लेकिन हमने थोड़ा सा आज मजलिस लेट भी शुरू किया है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि ज्यादा हम उसके अंदर डिस्कस करें। और एक और चीज जो है वो साइंस के अंदर जो है वो इस्तकरा, जिसको हम लॉजिक में कहते हैं इस्तकरा, इस्तकरा यानी रिसर्च करना, तलाश करना, सारे एविडेंस को इकट्ठे करना, जैसे एक डिटेक्टिव करता है ना, पुलिस क्राइम ब्रांच का एक इंस्पेक्टर करता है, वो भी जो है किसी केस को फॉलो अप करता है, तो उसके सामने ये इसी तरह होते हैं कि वो कभी जो है उसकी थ्योरी गेस लगाना शुरू कर देता है, कभी उसकी थ्योरी किसी को मुजरिम समझती है, कभी किसी को मुजरिम, जो जो उसके पास एविडेंस आते हैं प्रूफ बढ़ता जाता है, वो जो है केस उसके लिए क्लियर होता जाता है, उससे पहले उसके पास बहुत सारी थ्योरीज होती है। मसलन उसको एक प्रूफ ऐसा मिलता है जिससे कभी समझता है कि शायद इसके पीछे जो मुजरिम है वो कोई औरत हो सकती है, फिर एक प्रूफ मिलता है जिससे समझता है शायद इसके पीछे कोई मर्द हो सकता है, फिर कोई बूढ़ा हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, फिर कोई जवान हो सकता है। इतने सारे क्लूज जितने उसको मिलते जाते हैं, वो सारा करते 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 आखिर में जाकर किसी रिजल्ट पे पहुंचता है। अगर अब वो पाकिस्तानी पुलिस हो और साइंसदान भी कोई पाकिस्तानी माइंड का साइंसदान हो, तो जल्दबाजी में उसने जो है ना वो दो चार क्लू मिलते हैं, बस डिक्लेयर कर दो ये मुजरिम है, खत्म। तो बाज औकात साइंस के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं कि आप जो है जब तक पूरी पूरी तरह आपने किसी चीज को एस्टेब्लिश नहीं किया, तमाम तर एविडेंस और सलाह उनको इकट्ठा नहीं किया है, और उससे पहले आप जजमेंट देने बैठ जाएं एक हमारे मुल्क के एक पुलिस थानेदार और इंस्पेक्टर की तरह, दो चार सबूत हाथ में आ गए, उसी से फैसला ले लिया, बाद में पता चला असल मुजरिम तो कोई और था जिसके सबूत आपके हाथ में है, वो बेचारा वहां से गुजरा था या वो इत्तेफाकन वहां पहुंचा था, मुझे नहीं पता, मुझे ये यहाँ पर कहना चाहिए क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है तो बच्चे भी सुनते हैं, तो शायद वो कह ना करें मौलाना साहब ने ये बोला था तो फिर ये तो जायज है, हम भी करेंगे। मैं एक अरसे तक इंडिया का एक क्राइम पर मुश्तमिल एक टीवी सीरीज प्रोग्राम आता है जो क्लेम करते हैं कि सच्चे वाकयात के ऊपर, वैसे है भी क्योंकि बाद में मैंने रिसर्च भी की, सच्चे वाकयात के ऊपर जो है वो बनाया जाता है क्राइम पेट्रोल के नाम से। इंसानी अकल दंग हो जाती है दो चीजों को लेकर, एक इंसान जब जुर्म करना चाहता है तो कितना उसका शैतानी दिमाग बनता है, और दूसरा ये है कि जो इस जुर्म को पकड़ने मुजरिम को पकड़ने के लिए जो रिसर्च और तहकीक की जाती है, जिस तरह पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करता है, उसका दायरा कितना बड़ा वसीع होता है और कितना कुछ उसे करना पड़ता है अगर वाकई उसको सच तक पहुंचना है, तो इट्स नॉट ईजी थिंग। साइंटिफिक जदीद चीजों ने काफी हेल्पफुल बना दिया है, लिहाजा कोई भी चीज एस्टेब्लिश होने से पहले क्लेम करना, दावा करना, ये गुरु ने बिग बैंग की थ्योरी के बारे में, क्योंकि खुद मैंने आर्टिकल पढ़े हैं, मैं सोशल मीडिया ट्विटर के अलावा फेसबुक को इतना यूज नहीं करता, लेकिन वो चीज मुझे ऐसी मिली कि मैंने अपने फेसबुक पे डाल दिया, हालांकि मैं बहुत कम ही पोस्ट करता हूँ वहां पर, और वो मैंने जानबूझकर वहां पर जो है एक हेडिंग लगाई थी, बिग बैंग की थ्योरी गई तेल लेने, ये तंजिया जुमला लिखा था, क्योंकि उसके जो आर्टिकल्स वहां पर आ गए तो पता चला कि ये क्लेम जो इस बंदे ने किया है पूरी तरह एस्टैब्लिश होने से पहले क्लेम कर दिया है, इसलिए जो साइंटिफिक तरीका है। इसलिए आप देखते हैं कि मसलन लास्ट जो मैं आपको बयान करना चाह रहा हूं वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया था सनूरी हिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, हमने अपनी निशानियां आफाक में भी रखी हैं, अनफुस में भी रखे हैं, यानी खुद इंसानी वजूद में भी निशानियां हैं, इंसानी वजूद से बाहर भी हमने निशानियां रखी हैं। अगर आप चलते हैं ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में जो एक डिपार्टमेंट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हुड के नाम से, मैं इनके बारे में बहुत ज्यादा, खुद इनकी जात के बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं जानता, ये इनका एक आर्टिकल है द फाइंडिंग ऑफ द ब्रूस हुड प्रोफेसर ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एट ब्रिस्टोल यूनिवर्सिटी, वो एक कुछ जुमले कहते हैं, वैसे तो वो चाइल्ड साइकाट्रिस्ट है मेरे ख्याल में, उसके बारे में वो कहते हैं कि वो ये कहता है कि माफोकुल फितरत किस्म के अकायद, अब उसके अल्फाज हैं जाहिर है वो तो इसी तरह यूज करेगा, जादुई किस्म के तसव्वुरात हमारी पैदाइश के वक्त ही हमारे जहन में वायरिंग कर दी जाती है। अब जाहिर है वो साइंसी टर्म यूज करेंगे ना, वायरिंग करते हैं, इंस्टॉल करते हैं आपके कंप्यूटर की जमान में, यही बात इसी तरह बात करेगा ना, लिहाजा मजहब एक निहायत मजबूत कवी नफ्सियाती कुव्वत से फैज पाता है, जो पैदाइश के वक्त ही इंसानी जहन में वायरिंग की गई है, ये जिंदा है अभी मेरे ख्याल में, ओरिजिनली ब्रिटिश रहते हैं कनाडा में मेरे ख्याल में, अगर आप रिसर्च करेंगे प्रोफेसर हुड के बारे में तो कहता है इसी तरह, मसलन प्रोफेसर रूट आगे कहते यकीन रखता है कि लोगों को अकायद तर्क करने पर आमादा करना या उसे मोटिवेट करना कि तुम मजहब को छोड़ दो, कह रहा है कि ये सही इकदाम नहीं होगा क्योंकि अकायद इंसान की फितरत से उठते हैं, यानी वो जो टर्म यूज किया है उसने क्या है सच्चे फंडामेंटल लेवल, यानी जिसको हम बेहतर तर्जुमा जो हम कर सकते हैं वो ये कि इंसान की फितरत से जन्म लेते हैं। फिर आगे कहता हमारी तहकीकात ये बताती हैं कि बच्चे तबीयी तौर पर एक विजदानी तर्ज फिक्र रखते हैं, ये विजदानी तर्ज फिक्र क्या है वही फितरी है जो उन्हें माफोकुल फितरत चीजों को मानने की तरफ धकेलते हैं, वो कायनात के बारे में सोचे कि वो कैसे चल रही है, फिर आगे कहते हैं अगरचि वो बड़े होकर इन अकायद को अकली रूप देने लग जाते हैं, जो जो बड़ा हो जाता है बच्चा, वो जो उसके फितरत के अंदर जो वायरिंग है के जरिए से जो उसको इंफॉर्मेशन मिल रही है, अब उसको रैशनल बनाना लगता है और थॉट प्रोसेस के अंदर डालता है, लेकिन गैर मंतकी तरीके से माफोकुल फितरत वजूद को मानने का अकीदा मजहब की हैसियत से फिर भी मौजूद रहता है। खैर ये गैर मंतकी उसको लॉजिकल नहीं लगता है ना, क्योंकि मजहब का मामला आया है, लेकिन फिर एतराब भी करता है माफोकुल फितरत वजूद को मानने का, क्योंकि उनके नजदीक फितरत नेचर है, जाहिर है, तो वो उसको जो भी है वो मेटाफिजिक्स की बात कर रहा है वहां पर। इसी तरह जो है ये इनकी किताब जो है जिससे मैंने कोटेशन उठाए हैं वो है पता नहीं डेवलपमेंट इन द चाइल्डहुड, मेरे ख्याल में शुरू का हिस्सा मेरे पास कट गया है कॉपी करते वक्त, ये आपको मिल जाएगा आराम से अगर आप थोड़ा सा प्रोफेसर हुड को तलाश करेंगे। कुरान मजीद ने आवाज दिया कि फितरत अल्लाह अल्लती फतरा नासु अलैहा, खुदा ने अपनी फितरत पर लोगों की फितरत को बेस करके खल्क किया है, या और जगहों में फरमाया कुल्लु मौलूद यूलदु अला फितरत इस्लाम, हर दुनिया में पैदा होने वाला बच्चा मुआहिद पैदा होता है इस्लाम की फितरत पर, यानी दीनी फितरत पे पैदा होता है, उसके माँ बाप बाद में उसे डिफरेंट मजाहिब या इजम्स या सोच और ख्यालात में उसे ट्रांसफर करते हैं, यानी उस तरफ लेके जाते हैं। डॉक्टर विलियम जेम्स हैं, उनकी किताब है द वराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, ये भी साइकाट्रिस्ट गुजरे हैं, उनकी किताब बहुत से जबानों में तर्जमा हुआ है, बड़ी मशहूर किताब है, मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने ये किताब पढ़ी थी और मल्टीपल टाइम पढ़ी थी। ये दो तीन राइटर्स हैं, एक तो डॉक्टर विलियम जेम्स हैं, दूसरा जो एलेक्सिस कारल है द मैन अननोन के नाम से, इनको मैं ज्यादा पढ़ता रहा हूँ। आजकल दोबारा क्योंकि यूरोप में होने के बाद दोबारा जरूरत महसूस हुई इस तरह के टॉपिक्स की, जो मोस्टली हमारे यहाँ हमारी सकाफत में नहीं थी, क्योंकि हम फिलहाल जो है खास टॉपिक से बाहर नहीं आ पाए हैं अनफॉर्चुनेटली सोशली तौर पर। तो वहां पे विलियम जेम्स कहता है, मैं इस बात को अच्छी तरह मानता हूँ कि मजहबी जिंदगी का सरचश्मा दिल है, जिसको दिल कह रहा है असल में वो रूह है, हम फितरत भी कह सकते हैं, और इस बात को भी कबूल करता हूँ कि फलसफी फार्मूले और दस्तूर अमल इस तर्जमा शुदा मतालिब की तरह है जिसकी असल इबारत किसी दूसरी जबान में है। यानी वो मानना चाह रहा है कि जिसको डॉक्टर ब्रोस ने थोड़ा सा अपग्रेड करके बताया था उसको कई सदियां पहले, मतलब सदियां तो नहीं यानी कई दहाइयां पहले, डॉक्टर विलियम जेम्स ने एक और तरीके से बयान किया था और उसको कहा था किसी दूसरी जबान में, यानी अजनबी जबान में, जिसको डॉक्टर ब्रूस ने निकाल कर बताकर कहा कि वो जो है फितरत की जबान है, जो इंसानी जहन में वायरिंग की शक्ल में बिगिनिंग ही पैदाइश के वक्त बच्चे के अंदर होती है। इसी तरह आगे कहता है, जी मेरे ख्याल में इतना इनफ है, अब चलते हैं लफ्ज फितरत। मैंने अर्ज किया कि फितरत और तबीयत, समटाइम गरीजा का लफ्ज इस्तेमाल होता है, ये एक तकवीनी मफाहीम है, तकवीन के अंदर कायनात में ये चीजें पहले से मौजूद रही हैं, यानी इंसान की सरिश्त में, इंसान के वजूद का जो एक हिस्सा है उसके अंदर ये चीजें पहले से मौजूद हैं, और इनका ताल्लुक बराह रास्त आलम गैब से है, ये नॉन मटीरियल है, मादा नहीं है, जिस्म के अंदर है, रूह जब तक है तो उसका मटीरियल से ताल्लुक जरूर है, लेकिन ये बजात खुद इनके अपनी जो इनका अपना जो खिलकत है या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का लफ्ज भी सही नहीं आएगा, जब नॉन मटेरियल है तो वो नॉन मटेरियल है, मेटाफिजिक्स है दूसरे अल्फाज में, जिसको हम कहते हैं मावरा ए तबीयत है, रूह किसी फिजिकल किसी फिनोमेना का नाम नहीं है, किसी मटेरियल का नाम नहीं है। जब कुरान मजीद में भी पूछा कि रूह के बारे में हमें बताएं तो खुदा की तरफ से ही आयत होती है, कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कह दो कि रूह मेरे परवरदिगार का एक ऑर्डर है, एक हुक्म है, आप समझ नहीं सकते रूह क्या है। कहा रूह असल में किसी भी इंसान की असलियत है, शख्सियत है और पहचान है, ये जितने भी अच्छा किरदार बुरा किरदार है, ठीक है कि वो इंसान जो एक्ट करता है उससे वो चीज रिफ्लेक्ट होकर सामने आती है, क्योंकि सोशल जिंदगी के अंदर वो एक्ट सामने आता है, लेकिन असल जो चीज उसका ताल्लुक रखता है वो इंसानी रूह से ताल्लुक रखता है, कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कैरेक्टर इन एक्शन बॉडी के जरिए से बाहर आता है, बॉडी के किसी भी हिस्से से उसके जो है रिएक्शन और एक्शन के थ्रू सामने आता है, लेकिन असल में देखें तो कैरेक्टर इज रिलेटेड टू द
ओरिजन इज हिज रूह है, रूह उसकी ओरिजन है। लिहाजा जो है ये जो फितरत कहा गया है वो फितरत भी इसी तरफ से ताल्लुक रखता है। ये जो फरमाया कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, मैं अगर आपको उसे गुजारिश करूंगा, आप फितरत के बारे में मजीद डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो शहीद मुर्तजा मुतहरी की किताब है फितरत के इनवान से उर्दू जबान में, बहुत ही अच्छा मैयारी स्टैंडर्ड का तर्जुमा हो चुका है और आई थिंक कि इंग्लिश में भी तर्जुमा हो चुका है, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ना मिले तो एक वेबसाइट है उसका नाम है alhasnain.org, उसके उर्दू सेक्शंस पे जाएंगे तो आपको इस तरह की किताबें पीडीएफ और इवन वर्ड्स के ऊपर भी मिल सकती हैं, जो अच्छी अच्छी किताबें वहां पर हैं और भी लाइब्रेरीज हो सकती हैं। लिहाजा फरमाया इस्लाम कहता है देखें, बाय नेचर, बाय खिलकत, बाय क्रिएशन, हर इंसान फितरत इलाही पर खल्क होता है। खुदा ने कहा कि इंसान का नेचर यानी फितरत वो मेरे नेचर के ऊपर है, इसीलिए कहा कि इंसान मेराज आदमियत को छू सकता है, इसीलिए खुदा मुताल दीगर अहादीस के अंदर और कुरान मजीद की आयात के अंदर हमें ये इंडिकेट करता है बार बार, ये साइन हमें दिखाता है, डायरेक्शन असल में दे रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो मेरी सलाहियतें तुम में आ सकती हैं, क्योंकि तुम्हारी असास और फाउंडेशन मेरी फितरत के मुताबिक है। फितरत अल्लाह अल्लती, कुरान की आयत, फतर नासु अलैहा, खुदा ने अपनी फितरत पर बेस करके लोगों की फितरत बनाई है। लिहाजा इंसान चाहे तो ऐसी सलाहियतों का मालिक हो सकता है कि जो खुदाई सलाहियतें हैं। अब वो क्या है वो आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। और हदीस के जरिए फरमाया कि देखिए, दुनिया में कोई भी बच्चा कहीं पर भी पैदा होता है, जंगलों में, शहरों में, किसी भी घर में पैदा होता है, एथियस के घर में या किसी जो है मुत्तकी परहेजगार के घर में, मोमिन के घर में, बाईमान शख्स के घर में, लेकिन कहा कि बेसिकली वो बाई नेचर क्या है, इस्लाम के ऊपर पैदा होता है। इन्ना अबवाहुमा, फरमाया कि उनके जो वालिदैन हैं वो उस बच्चे को यहां से वहां करते हैं। इस तमाम तर गुफ्तगू का जो खुलासा निकलता है वो ये है कि स्टिल एथियस्ट को के पास ऐसी कोई मजबूत दलील नहीं है या मजबूत कोई ऐसी बात नहीं है जिसको आदमी जिसको लेकर परेशान हो जाए कि ये क्या बात कह दिया, ये तो अभी प्रूफ ही नहीं हो सकती। हाँ, जो देहरियत कदीम थी, इलहाद कदीम था, वो नए उलूम की तरक्की की वजह से उनको कुछ नए हथियार हाथ में जरूर आए हैं, लेकिन ये हथियार उन लोगों के ऊपर कारगर साबित हो रहे हैं जिनकी दीनी मालूमात बहुत कम है या जिन्होंने भी हत्ता अपने अकीदे और दीन को भी यहां से अंडरस्टैंड करने की ज्यादा कोशिश नहीं की है, या वो मरऊब हैं, मरऊब हैं। ये बहुत अहम है, कुरान मजीद भी इसको कोट करता है, नाहजुल बलागा में मौला अली अलैहि सलाम भी इसको कोट करते हैं। बास जगहों में हम देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहि सलाम भी इस तरफ इशारा करते हैं कि मरऊब नहीं हो जाओ किसी सकाफत से, किसी सोच से, किसी फिक्र से, किसी बंदे से, उसके रोब में आने की जरूरत नहीं है। आदमी जब मरऊब हो जाता है तो उसका हर गलत अच्छा लगने लगता है। बनी उमैया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि उन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया था कि ऐसे कमजोर लोग मरऊब हो जाते थे। मिसाल के तौर पर मशहूरत पैदा हो गई थी सीरिया के अंदर और पूरे जजीरतुल अरब में कि माविया इब्ने सुफियान का जो दस्तरखान है ना, उसमें इतनी नियमतें होती हैं, इतने खाने होते हैं, इतनी चीजें होती हैं कि बंदा वहां जाए तो उठने का दिल ना करे उसे। एक शख्स कूफे से चला गया था शाम और दरबार में भी गया, जाहिर है माविया के पास मिलने के लिए, तो कल्चर था उस वक्त, तो खाने का टाइम था। पता चला कि कूफे से आया है जो कि हेडक्वार्टर है इमाम अली अलैहि सलाम की खिलाफत का, तो उसे बड़ी पजराई की और उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा जो है ना कोशिशें की उसके खाने पीने के लिए। खाना पीना बहुत अच्छी तरह खाने के बाद माविया ने सवाल किया कि ये बताओ, तुम्हें अली के साथ जब वक्त गुजारते हो तो अच्छा लगता है, या आज तुम मेरे साथ जो तुमने टाइम गुजारा है उसमें तुम्हें अच्छा लगा? तो उस शख्स ने जो जुमला कहा वो बड़ा मीनिंगफुल था। उसने कहा, माविया, दस्तरखान तुम्हारा बड़ा अच्छा है, नमाज जो ना जमात
अली की बहुत अच्छी है। ये क्या है, ये वही है ना कि मैं दुनिया भी चाहता हूं उकबा भी चाहता हूं, और दोनों का अगर मैं से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। और इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने कल के जुमले के अंदर ही है मैसेज कि ऐसे लोग जिनको दुनिया किसी जालिम व जाबिर की अच्छी लगे, किसी बेइंसाफ आदमी की अच्छी लगे, और उसे जो है खुदा और दुआ और मस्जिद और मुनाजात किसी परहेजगार की अच्छी लगे, ऐसे शख्स के बारे में इमाम ने फरमाया कि फाइजा मुहिस्सु बिल बला कल्लत दयानू, और जब वो मुश्किलात में पड़ जाते हैं तो फिर दीदार बहुत कम रह जाते हैं। मैं बस इशारा करता हूं, आज हुसैन की 5 से 6 साल की यतीमा बच्ची, जिसको हम सब हजरत सकीना सलामुल्लाही अलैहा के इनवान से जानते हैं, उनकी शहादत के हवाले से, क्योंकि हमारे दोस्त जाने वाले हैं, तो मैं उनके एहतराम में चाहूंगा कि ये मसाइब मैं आज पढ़ लूं। देखें, जो मशहूर रिवायत है हमारे उलमाए कराम ने, शेख मुफीद ने भी जिसको कोट किया है, और आयतुल्ला जवादी तबरेजी ने हरम हजरत सैदाए सकीना और रुकैया सलाम अलैहा में इसको अरबी में लिख के लगाया है, वो मशहूर रिवायत ये है कि इस जिंदान के अंदर कैद थे अहले बैत अलैहिस्सलाम। कुछ टाइम गुजरा था, शायद 3 दिन 4 दिन या 6 दिन या 7 दिन, कि रात को ख्वाब में हुसैन की यतीमा बच्ची इमाम हुसैन अलैहि सलाम को ख्वाब में देखती है। इससे पहले इस बच्ची ने बड़े सितम सहे, शाम गरीबां की रात इतना बड़ा सितम और जुल्म हुआ, जब खेमों में आग लगाई और एक तरह से एक हला गुला की कैफियत पैदा हुई, तो उस दौरान में ये बच्ची खेमगा से निकली। और बच्ची, जाहिर है कि कहते हैं बच्चियां बाप के बहुत ज्यादा करीब होती हैं और बाप के ऊपर उनका इंहिसार होता है, तो बच्ची ने अपने बाप को पुकारना शुरू कर दिया, बाबा बाबा कहते हुए खेमे से निकली और मकतल में पहुंची है बच्ची। 5 से 6 साल की उम्र में इस यतीमा मजलूमा को ऐसे मनाजिर देखने पड़े कि मकतलगाह के अंदर जब पहुंची तो वहां पर 72 से ज्यादा, 100 कुछ जो है अजीज व अकरबा और इमाम आली मकाम के अंसार के सर बुलीदा लाशें वहां पर मौजूद थी, और इस बच्ची ने ये सारे मनाजिर देखे हैं। और फिर जो है सानिये जहरा जैनब कुबरा ने जब तलाश शुरू कर दी, वो तलाश करते करते उस गोदाले कतलगा, जिसको कहते हैं कि कतलगा में जहां जमीन थोड़ी धसी हुई थी, जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नवासे रसूल की बे गोरो कफन लाश पड़ी हुई थी, वहां पर पहुंचती हैं तो देखते हैं कि जनाब हजरत सकीना इमाम आली मकाम के सीने मुतहर पर सर रखकर सोई, जगाती हैं, सीने से लगाती हैं और पूछती हैं कि बेटा तुम यहाँ पहुंची कितनी हो, क्योंकि काफी डिस्टेंस था खेमगा और मकतल के दरमियान, जहां पे जो बैटल फील्ड कहलाती है, मैदान जंग है वहां पर। कहती है कि पोपी अम्मा, जब आग लगाई गई हर कोई दौड़ रहा था, तो मैं भी दौड़ते हुए बाबा को पुकार रही थी, तो बाबा की यहां से आवाज आने लगी, आवाज में कह रही है बेटा सकीना तुम यहाँ चली आ जाओ, और मैं आवाज को फॉलो करते करते यहां पर पहुंची हूं। इस तरह के सितम से उसी रात जो है अशकिया जहां पर लूटमार मचा रहे थे, तो इस मासूम सकीना की बच्ची के कानों में जो बालियां थी उसको इतनी जोर से खींचा कि कानों से खून बहने लग गया। और शायद मुझे नहीं पता कि तारीख में किस बच्ची का जिक्र किया है, आसार और कराइन ज्यादातर इस बात की दलालत करते हैं कि हुसैन की इसी यतीमा बच्ची के बारे में ये बात आई है, जो हमीद इब्ने मुस्लिम ने कोट किया है, जो करबला के रावी थे, वो कहते हैं कि मैंने एक बच्ची को देखा जिसके दामन में आग लगी थी और रेगिस्तान करबला में चीखते हुए दौड़ रही थी, और बार बार जो है मैंने जब करीब जाके बुझाने की कोशिश की तो उस बच्ची ने कहा शेख मेरे नजदीक मत आ जाओ, तुम नामहरम हो, और उस बच्ची की आग बुझ गई, तो उसके बाद मुझे कहा शेख तुम मुझे बता सकते हो कि नजफ का रास्ता कहाँ से जाता है, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का रोजा हर खास और आम को पता नहीं था कि नजफ में है मौला अली दफन है, बड़े अरसे के बाद जाकर हर किसी को पता चला है कि मौला का रोजा कहाँ है, खास लोग जानते थे। मैंने ताज्जुब से इस बच्ची से कहा कि तुम नजफ क्यों जाना चाहती हो, तो बच्ची कहने लगी मेरे दादा वहां पर, मैं अपने दादा के पास जाना चाहती हूँ, वो मुश्किल कुशा थे, फातेह बद रोखे करते। अजीज वो ये बच्ची है जिसने पूरे रास्ते इतने सितम सहे हैं, इतनी जो है कहते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम झुक कर चलते थे, खमीदा अंदाज में चलते थे। एक तो ताजियाने थे, तकलीफ थी, लेकिन उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि एक ही रस्सी सबके गले में बंधी हुई थी। जब आहले बैत खड़े हो जाते थे, काफिले के बड़े खड़े हो जाते, तो रस्सी खिंच जाती थी और मासूम सकीना के गले में रस्सी तकलीफ देती थी। इतनी अजियतें इस बच्ची ने, 5 से 6 साल की बच्ची ने सहे हैं। सहते सहते ये शाम पहुंचती है, शाम के उस जिंदान में, कदरे उस टूटे फूटे जिंदान के अंदर जिसकी छत भी नहीं है, एक अरसे तक वहीं पे रखा गया, बाद में अहले बैत को दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया, तो शुरू के अय्याम में ही शहादत वाकई हुई है। उस बगैर छत के जिंदान में थकी हारी, इतनी सितम दीदा, इतनी मुश्किलात सहती हुई एक 6 से 5 साल, 6 साल की बच्ची वहां पर जो है थोड़ा शायद सोया, पहली बार शायद उसे नींद आई, और नींद में वो अपने बाप को देखती है और आधी रात को उठती है और फरियाद करती है, मैंने अपने बाबा के पास जाना है। यहाँ तक कि अहले बैत फरियाद करते हैं, सब रोने लग जाते हैं, गिरिया हुआ बुका उस खामोश रात में फजाओं को चीरते हुए कसर यजीद तक पहुंच जाते हैं। यजीद उठता और कहता है कि क्या शोरगुल है यहाँ पर, क्या हंगामा राई हो रही है। कहते हैं कि यजीद वो असीर रो रहे हैं, वो कैदी है आले मोहम्मद रो रहे हैं। कहते हैं कि क्यों रो रहे हैं। कहते हैं एक बच्ची है जिसने बाप को ख्वाब में देखा। कौन बच्ची है? कहते हैं ये हुसैन की यतीमा बेटी है और मजलूमा बेटी है। हुसैन का नाम सुनना था, यजीद की यजीदियत और पलीदियत लौट आई, आवाज दी अपने गुलाम को, अपने दरबान को, एक तश उसे पकड़ा दिया और कहा कि लेके जाओ जो उस टूटे हुए मकान में जो कैदी हैं, ये ले जाकर उस बच्ची को दे देना। अब इसके बाद वो बच्ची कभी भी नहीं रोएगी। इधर उस टूटे हुए मकान में दक्कुल बाब होता है, पूछते हैं कि तुम कौन हो? कहते हैं मैं, हमें अमीर ने भेजा है, तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। कहते नहीं, आधी रात में हम पहले से सितम दीदा हैं, हुसैन की यतीमा और मजलूमा ने अपनी गिरियाओजारी से हमारे जख्म ताजा कर लिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, लौट जाओ। कहता नहीं, अमीर का हुक्म है, तुम्हें लेना होगा। दरवाजा खोल देते हैं, उस तश को ले लेते हैं, और क्योंकि एक खास कैफियत तारी हो चुकी हुई है अहले बैत हरम के अंदर, उस तश को लेकर आगे बढ़ते हैं, हजरत मासूम सकीना के पास जाते हैं और कहते हैं बेटा सकीना खामोश हो जाओ, ले देखो तुम्हारे लिए कुछ आया है। मासूम सकीना समझती है कि ये खाना लेकर आए हैं, फरियाद करती है मुझे भूख नहीं लगी, मुझे भूख नहीं लगी है। आयतुल्ला नराखी यहाँ पर एक जुमला कहा करते थे, कहते थे कि हजरत सकीना ने कहा अगर अगर तुम खाना लेकर आए हो तो बुबी अम्मा पे लेकर बला चले असगर को दोनों। अब ये बातें हो रही थी, मासूम सकीना आगे बढ़ी। आयतुल्ला जवाद तबरिजी ने जो मसाइब लिखे हैं उसके मुताबिक बच्ची ने जू ही तश के ऊपर से कपड़ा हटाया, अपने बाप का कटा हुआ सर देखा, आवाज दी माँ भी कया बता, बाबा जान तुम्हारे साथ ये किसने जुल्म सितम किया है, बाबा जान तेरे होंठ फटे हुए पेशानी जख्म है, बाबा जान अबरू कटे हुए सर को सीने से लगाया, सकीनों की रूह परवाज कर गई। अहले बैत के लिए शाम में पहली शहादत वाकई हो गई है, अहले बैत से हुसैन की याद भी बिछड़ गई है। वाह मोहम्मदा, वाह हुसैना, वाह अलिया की फरियादें बुलंद होने लगी, अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ी नज़ल मुअय्यमुन कलबियन अकलिबून। परवरदिगार।